हमारे पास में भेज दिया। गुरु जी ने वो पत्र पढ़ करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती पुरस्कार भी दिया। बिनोद को उन्होंने बुलाया और बोले तुम्हारी भैया बीमार है और शायद वो न बचे, इसलिए तुम्हारा जाना उचित है, तुम जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सुन जाओ। गुरु जी सुन करके चले आए। दूसरे दिन तुमको उसी दिन जाने के लिए था, दूसरे दिन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बुला करके पूछा कि सबके परमानंद प्रभु जी जो प्रभुपाद के पास में रहते थे और गुरु जी से परमानंद प्रभु बड़ा बंधुत्व था, आधी रात के समय में प्रभु सोए रहे हैं, प्रभु प्रभु कह करके उनका दरवाजा खोल देते, प्रभु का पैर दबा करके उनको सुला करके सब सोते, और प्रभुपाद जी किसी को तुम नहीं कहते, तुम ही नहीं कहते, केवल बस परमानंद प्रभु को और दूसरे हमारे गुरु जी को तुम्ही तुई डोगरा इत्यादि सब कहा। डोगरा मैंने क्या, डोगरा मैंने बोला भाड़ा मूर्ख, कुछ न समझने वाला,
गोका जहाज
मैंने मूर्ख का जहाज, ऐसे जब इनको कहा करते थे और इनके बिना रह नहीं सकते थे इन लोगों को, तो वो परमानंद प्रभु इत्यादि बात के बड़े ठीक थे। ये दोनों इनके गुरु जी की सेवा करते थे। पीछे क्या कह रहा था तुम लिया हाँ, तो वो उनसे पूछा प्रभुपाद जी ने, देखो तो विनोद को, विनोद तो मैंने कहा था, विनोद क्या नहीं बोले थी ना, तुम्हार मायर अवस्था खूब खराब, तुम ही जाओ एक बार, तुम जाओ तुम्हारी मैया बीमार, तो गया कि नहीं जरा देख करके घूर करके आओ, तो देखा जी कोने में चुपचाप करके बैठे हुए, अभी 17-18 वर्ष के बच्चे बैठे, अरे जाओ उसको बुला लो, तो बुला करके लाए, क्योंकि तुम गया नहीं अपनी बीमार मैया को देखने के लिए, तो कुछ नहीं, अरे तुम गया क्यों नहीं भाई बताओ, तो यदि मर जाए तो प्रभु मैंने नहीं गया, क्यों नहीं गया, तो मैंने सोचा कि मैया का अंतिम दशा है वो जा रही, और अंत में जब मैं जाऊंगा और अंतिम सांस लेते हुए यदि कह दिया बेटा मैं तो जा रही हूं, घर बेकार ऐसा ही कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए तुम घर में आकर के विवाह शादी करके घर को संभालना, तुम्हारे से जमानदारी और कोई संभाल नहीं सकता है, और चार भाई तो ऐसे ही है कुछ नहीं समझ, इसलिए तुम देखो, तो उस समय माता जी की अंतिम जो आज्ञा है उसको तो पालन करना पड़ेगा, और इधर मैं परमार्थ से रह गया, आपकी सेवा में नहीं कर सका, तो हमारा कोटि कोटि जन्म चला गया, इसलिए मैं सोच विचार करके मैं नहीं गया। तो बात की आंखों से आंसू आ रहा है, ठीक शिष्य हो तो ऐसा उसको परमार्थ तत्व नहीं, इतना आप विधता हो कि संसार कहीं भी जा रहा है उसके लिए अपना समय बर्बाद नहीं करे, अर्थ के लिए प्रतिष्ठा के लिए कनक कामिनी और प्रतिष्ठा इन तीनों के लिए भजन हम छोड़ देते हैं, और साधु पुरुष जन्म लेकर के सबको छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं, हम लोग मठ छोड़ करके घर छोड़ करके आकर के भी इन चीजों के संग्रह में लग जाते हैं, और कहा महापुरुष लोग या जो एकांतिक भक्त हैं वो क्या करते हैं, कितनी विपरीत सब संसार को छोड़ करके कामना वासना सब छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं। कभी कभी हमको डर लगता है, किसी किसी को घर से छोड़ करके आते हैं तो उस समय उनको डर लगता है मुझे ये कहने में कि भाई तुम घर छोड़ करके मत आ जाओ, ये मैं कहने में डर लगता है, क्यों दुर्घटा तो है नहीं, घर में है तो कुछ बच्चों के प्रति गुरु के प्रति भक्ति के प्रति कुछ श्रद्धा है, और जहां मठ में आए कुछ दिन रहे, धनी घर के लड़के स्त्री भी छोड़ करके आए, अब यहां आएंगे तो सोने की घड़ी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ रुपए भी गुरु और वैष्णव के नाम से जो संग्रह करते हैं वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। अभी कुछ दिन, अभी कुछ दिन की बात है, एक आदमी ने कहा कि हमने आपके लिए मठ के सेवा के लिए आपके लिए कुछ पैसे दिए थे, आपको मिले? उसको मिले नहीं। तो मैंने कहा दिया कि हाँ मिल गए। किस लिए कहा? कि सब लोगों पर ऐसे अविश्वास हो गया। मैंने तो बताया नहीं, किंतु समझ लिया जैसे ये कुछ पैसे रखते हैं। तो कहां संसार छोड़ करके आए और कैसी प्रवृत्ति होकर के बस इसी में लगे तो भजन क्या होगा? और कहां देखते हैं बड़े बड़े धनी घर के लड़के लड़कियां भी, सुकुमार लड़कियां और लड़के, संसार छोड़कर वैभव छोड़कर के रघुनाथ दास को स्वामी लोग, और कैसे आकर के भजन किया एकांतिक काम का वक्त और कामों का वक्त। यदि घर छोड़ गए आकर के फिर उसी में लग गए तो फिर क्या हुआ? जबकि एक एक पैसा रखने लगे उसके लिए, अपने खाने के लिए, पीने के लिए, तो भजन क्या हुआ? ऐसे गुरु जी ये सब कुछ छोड़ करके इसीलिए घर में नहीं गए कि माता जी कह देंगी ये तुम घर में रहो तो हमारा परमार्थ जन्म जन्म के लिए बिगड़ जाएगा। प्रभुपाद जी उनको ढोकला कहते थे, वो काट जहाज किस लिए कहते थे? और जितने हैं अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ करते थे, कुछ पुस्तक भी रखते थे या जैसा भी करते थे। अपने लिए उन्होंने एक पैसा भी अपने जीवन में कभी नहीं रखा, न कोई चीज संग्रह किया, बस भक्ति ही संग्रह किया और प्रभुपाद जी की कृपा, वैष्णव की कृपा और सिद्धांत संग्रह किया, और कुछ नहीं संग्रह किया। इसे जब मठ छोड़ करके आए, बहुत से लोग आए तो दो दो लाख रुपया लेकर के आकर के एक एक मठ उन लोगों ने स्थापित किया, कोई पांच लाख, कोई दस लाख रुपये लेकर के। और हमारे गुरु जी जब आए, मठ छोड़ करके आना पड़ा, एक पैसा भी, एक फार्सिंग पेन भी नहीं, एक कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे खाली हाथ आए। पर गुरु जी की कृपा और भगवान का भरोसा से सबक भारतवर्ष में आज उनका प्रचार है। इसलिए वो ढोकला करते प्रभुपाद जी की सेवा के लिए और महाप्रभु जी के प्रचार के लिए जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं वैसा करते थे। क्या करते थे? कपड़े पहनते थे कैसे? बड़े सुंदर। किस लिए? बड़े बड़े राजकीय जो कर्मचारी हैं, जज हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, वो हमारी बातों को यदि लंगोटी पहन करके जाएं कोई नहीं सुनेगा। तो ये इस रूप में रहते थे, विनोद बाबू सब कहते थे। नौदीप में वहां कृष्णानगर में वो कोई होती है गवर्नमेंट की कुछ कमेटियां, उसके सलाहकार भी नियुक्त हो गए जानबूझ करके, और वो करके चारों तरफ में प्रचार करते थे और सब लोगों को वेदांतिक दार्शनिक पंडित कहा करते थे और इनकी बड़ी धार थी, सब लोग इनकी बातों को सुनते थे। एक समय वो इलाहाबाद आए, इलाहाबाद आए तो वहां पर हमारे इनके परिचित, वहां पर गौड़िया भट्ट था उस समय, अभी भी है, तो वहां के बहुत से वकील लोग सब आए, इनसे बात होने लगी। इनको समझ लिया कि ये बड़े भारी दार्शनिक पंडित थे। और उसी समय में वहां के चर्च के जो सबसे हेड जो बिशप थे वो वहां पर कहीं पर मिले, वकील के घर पर, और गुरु जी भी वहां पर थे। वो जो बिशप था वो ईसाई धर्म का प्रचार करता था और हिंदुओं को मूर्ख बनाकर ईसाई बनाता था, और इसकी कहां कहां कमियां हैं हिंदू धर्म में वो सब निकाल कर रखता था और लोगों को वो तंग करता था, निरुत्तर करता था। तो वकील के घर में जब ये आए तो वो भी इसी कारण से आया, तो वकीलों ने परिचय इनका करा दिया कि हमारे सनातन धर्मी हैं, गौड़ीय मठ के हैं, और ये दार्शनिक विद्वान है, और उनका प्रचार बतलाया कि ये बिशप हैं चर्चों के और बहुत विद्वान आदमी। सुन करके वो बोला, अच्छा ये बताओ तुम लोग कृष्ण जो काले हैं उनकी क्यों उपासना करता है, बतलाओ तुम। अरे उपासना करना है तो खूब सुंदर चीज का उपासना करो, काला कुछ कुछ भी टेढ़ा, अरे मारा तो एक बगुला को मार दिया, एक सांप को मार दिया, और कहिए चाहता है ये क्या विशेषता है, ये तो नौकर क्या करो का काम है। तो उस कृष्ण की आप लोग क्यों आराधना काले की क्यों करते हैं। गुरु जी ने कहा इसके बैकग्राउंड में फिलॉसफी है, क्या फिलॉसफी है, जगत का सब कुछ ये है, गुण है, सब रजतम के अंतर्गत काम क्रोध लोग मध्यों से भरा पड़ा है, किंतु ब्लैक इज नो कॉलर, ब्लैक जो है वो कॉलर नहीं है, इस पर कोई भी कॉलर लगाओ तो काला अपनी कमरिया रंग में सबको डुबा देता है, कोई भी रंग लगा दो, लाल काला लाल सफेद जो कुछ भी सात रंग हैं उनको लगा दो, किंतु उस पर काला कोट दो, यदि कोई चीज इसको मिटाना है तो क्या करना था, पहले काला लगाओ तो वो टूट जाएगा और इस पर कोई भी अपना काम नहीं करेगा, इसलिए ब्लैक इज नो कॉलर। हमारे जो भगवान हैं अब प्राचित तत्व हैं, जगत के गुरु के अंतर्गत में हैं, हम लोग निर्गुण अप्राचित भगवान का भजन करते हैं। उन्होंने बगले को क्यों नहीं मारा, बगला जो धार्मिक जैसे आप लोग हैं भगवान से रोटी मांगते और शरीर को कहते हैं कि हम हैं आत्मा, ऐसे बगला भक्तों को मारने वाले हैं और सांप को नहीं मारा, सांप को क्या मारे, सांप माने अजगर जो है ना, ये भी शैला होता है, ये भी शैला होता बड़ा भाई। बीज क्या है संसार में, आसक्ति ही सबसे बड़ी सारी बीज है, इस बीज को उन्होंने दूर किया था साधारण ये नहीं, इसलिए ब्लैक इज नो कॉलर, हम लोग अपराकित तत्वों की उपासना करते हैं। तो वो हंसने लगा, हंस करके कहता है तो आप लोग चैतन्य महाप्रभु जो गौरव वर्ण के हैं उनकी क्यों आराधना करते हैं। वो किन लोगों ने देखा जैसे ये तो हरा दिया इनको, अब इसका उत्तर क्या देंगे, बड़ी उपस्थित पूछी शास्त्र प्रमाण की अभी किनके भाषाओं में कोई जरूरत नहीं होती थी, कोई ये श्लोक अभी कोट नहीं करते थे, किंतु मेमोरी ऐसी थी उनकी अद्भुत, श्लोक तो याद किंतु इतने युक्तिवादी थे जो शास्त्रों की युक्तियों से जो चीज सरल नहीं होती थी सभी इन साधारण युक्तियों से उस चीज की स्थापना करते थे। उन्होंने कहा कि देखो हमारे यहां एक इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में सब रंग मिला करके होते हैं, जिसको भिगजियर कहा जाता है, भिगजियर माने क्या, भी भिंडिगो, उसमें भिगजियर में सात अक्षर हैं और उसमें समस्त येलो रेड इंडिगो इत्यादि सात कलरों के उसमें नाम है, पहला पहला अक्षर से मिला करके भिगजियर शब्द बना है समझा करके, इसलिए जहां पर सातों रंग एकत्र होते हैं और सबसे जो सुंदर रंग है जो अपराकृत है उसका हम बहुत के रूप में बजे कट एकदम उसका मुक्त हो गया, निरुत्तर हो गया और उनके समस्त विचारों को गुरु जी ने खंडन कर दिया, बस दुम दबा करके वहां से भागा, फिर कभी इनसे मिला नहीं। ऐसे ये युक्तिवादी थे। श्रीमद्भागवत में एक श्लोक है, वदन्ति तत्व विदत् सत्यं यज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। हमने बहुत बहुत टीकाकारों का, सिद्धार्थ स्वामी का, जीव गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी और हनुमत का और बड़े बड़े टीकाकारों पर 60 टीकाएं हैं भागवत के ऊपर, उनके टीकाओं को हमने देखा उनमें बड़े सुंदर सुंदर इसके अर्थ हैं, तात्विक अर्थ हैं और व्याख्याएं, किंतु उनके मुख से अलौकिक एक सुना और उनकी युक्तियों में से न देकर के अपनी अपने विचार से उसकी स्थापना, वो क्या, अब बड़ी सरल सहज मायावाद का खंडन करने के लिए वदंती तत्व विदर तत्सम यदि ज्ञान अद्वैत परमात्मे ही भगवान। उन्होंने कहा एक तत्व है, क्या है, अद्वैत ज्ञान तत्व, दो तो तत्व नहीं है, एक ही तत्व, वो है अद्वैत ज्ञान। किंतु उसी अद्वैत ज्ञान से उसी के अंतर्गत में दो है ना, तो अद्वैत बन ही नहीं सकता, दो नहीं रहेगा तो अद्वैत तत्व बनेगा, तो दो भी है किंतु दो भी नहीं एक, कहा क्या तात्पर्य, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन एकत्व में बहुत्व, बहुत्व में एकत्व, एक ही परतत्व, उनकी तीन शक्तियों के परिणाम स्वरूप ये चित जगत, जीव जगत और माया जगत है और सब उसी का ये प्रकाश है। भगवान के जितने अवतार हैं उनके एक प्रकार के हैं, जीव उनका अंश है, तो भगवान के उनके जो अवतार हैं वो भी अंश हैं, किंतु वो स्वरूप के अंश हैं और जीव विभिन्न अंश है, उनकी शक्ति से प्रकटित हुआ है। इस प्रकार से ये जगत सब कुछ दिखता है एक सबके अंतर में बस वही क्रम है, अब वैज्ञान है, उनकी शक्ति इत्यादि से ही प्रकाशित है, उसी की तीन प्रकार की प्रतीतियां हैं, एक प्रतीति प्रथम प्रतीति ब्रह्म, दूसरा और तीसरा। और इन तीनों प्रतीतियों में जो ज्ञानी योग हैं, ज्ञान योग से भगवान का रूप नहीं दर्शन कर पाते, उनकी गुणों की उपलब्धि नहीं कर पाते, ज्ञान के माध्यम से नाम रूप गुण लीला इत्यादि का दर्शन उपलब्धि नहीं कर पाते, इसलिए उनको उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म के रूप में देखा। ये ब्रह्म है भगवान की अंग ज्योति, वो भी अचम्मक प्रतीति अर्थात केवल मात्र चित्त की आंशिक और विकृतिक प्रतिफलन का नाम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म भी नहीं, विकृत प्रतिफलन है ब्रह्म, उसमें नाम रूप गुण लीला इत्यादि नहीं, किसको ज्ञानी लोग, जो भी लोग उन्हीं को परमात्मा के रूप में योग के द्वारा उनका दर्शन करते हैं और भक्त लोग उनको भगवान के रूप में। यदि मायावाद ज्ञान वाले कहते हैं ज्ञानी लोग कि ब्रह्म ही सबसे परम तत्व है, जैसा शंकराचार्य ने और उनके अनुयायियों ने ब्रह्म तत्व को सर्वश्रेष्ठ माना, ठीक है हम तुम्हारे कहने से मान लेते हैं, किंतु एक हमारा इसमें संदेह है, क्या पूर्व पक्ष है, तुम्हारा ब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ तत्व है तो शास्त्रों में पर्व ब्रह्म तत्व का जो प्रयोग होता है ये क्यों, किसके लिए होता है, यदि ब्रह्म ही सबसे परतत्व है, आ रहा है समझ में, सहज है क्योंकि युक्ति तर्क भी बड़ी बोधगम में है, किंतु है प्रभारित गंभीर तत्व, इनके बोलने में वो शैली थी, ये साधारण व्यक्ति भी इसको समझ सकता है, तो कहते हैं कि यदि ब्रह्म ही सबसे परतत्व है तो ये परब्रह्म, और जैसे कि बतलाया भागवत में अहो भाग्यम नंद भोग प्रजौषाम जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परात्पर ब्रह्म इत्यादि की जो बातें सुनी जाती है ये किस लिए, इसलिए ब्रह्म कभी भी पूर्ण तत्व नहीं है, जब परम उसमें लगाए हैं तब वो पर ब्रह्म ही एकमात्र, इसलिए पर ब्रह्म इज इक्वल टू भगवान। दूसरा आत्मा यदि शब्द ही यदि सबसे बड़ा होता तो परमात्मा क्यों कहते हैं, इसलिए आत्म तत्व भी श्रेष्ठ तत्व नहीं हो सकता है, ये परम आत्मा नित्य नित्यानंद चेतनानाम एको बहुनाजा विद्धार्थ कामान समाप्त शांति आपूति अतः नित्यों में परम नित्य है जो समस्त आत्माओं में परम आत्मा है वो परमात्मा है किंतु भगवान के लिए परम भगवान इत्यादि शब्द का कोई प्रयोग नहीं आता इसलिए भगवान के लिए स्वयं भगवान आया है इसलिए कृष्ण ही स्वयं भगवान है और जो सब तत्व हैं उनके अंश हैं कोई कला है एक अंश कला पूजा कृष्ण तू भगवान है इसलिए स्वयं भगवान ये कृष्ण है ब्रह्म उनकी अंग ज्योति है और परमात्मा साक्षी के रूप में वो अंश इनके मात्र है इस तरह से भगवान ही पूर्ण और सर्वोत्तम तत्व है यही इसी भागवत भगवान का श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में परिपूर्ण रूप से वर्णन किया उनके नाम रूप गुण लीला का और वही अद्वैत ज्ञान पर सब वो यदि वो कहें कि यदि कृष्ण का तो आकार है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं यही उनकी विशेषता है इसीलिए वो मध्यम आकार होते हुए भी सर्वव्याप्ती सर्व व्यापक रस के समुद्र भगवत्ता की सार सब कुछ है रसो वही सब हो सकती एक समय की बात है यहां वृंदावन में माधव महाराज जी की विग्रह प्रतिष्ठा हो रही थी और उसी में उनको बुलाया गया हम लोग उनके साथ में गए थे उन्होंने अपूर्व एक विग्रह तत्व के संबंध में भाषण दिया है उनका भाषण का भी बहुत मूल्य है उन्होंने भाषण दिया हमने हिंदी में उसको लिख करके और बंगला में भी अनुवाद करके भेजा था तो बंगला के पत्रिका में छप गया था और उन्होंने भागवत पत्रिका में भी ये प्रबंध छपा था उसमें उन्होंने कहा श्री विग्रह के संबंध में चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के विचारों में कुछ आदान प्रदान हुआ पूरी में और वेदांत शास्त्र के द्वारा मां चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको अच्छी तरह से समझा दिया कि भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब है और रस के समुद्र है ये समझाया उनको अच्छी तरह उन्होंने एक बात निकाला सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अरुपवत एवं ही सब प्रधान भगवान अरूप हैं गुरु जी भाषण दे रहे हैं कभी कुछ पुस्तक चौकी देखने की जरूरत हम लोग तो पुस्तक देख लेते हैं तब तो नोट कर लेते हैं महाराज जी नहीं देखते किंतु हम तो देख लेते हैं और देख करके कुछ ठीक पॉइंट कर लेते हैं और उसको सोचते हैं तो वो भाषण दे अद्भुत एक एक युक्तियां हम लोग उन युक्तियों को लिखते थे मेरा काम ही ये था कि जो भाषण दें और छाया की तरह में जब तक उनके साथ में था दिखता भी था और जो समझ में नहीं आता भाषण के बाद में उनसे पूछ करके फिर से उसका संशोधन कर लिया पत्रिका इत्यादि को दे दिया और रिपोर्टर और संवादक की भांति तो वो कह रहे हैं क्या बतलाया सब विचार कर रहा है महाप्रभु जी और उनसे उन्होंने हमारी बात को समझा सात दिन मैंने वेदांत दर्शन तुमको उनको पढ़ाया और तुमने हाँ भी नहीं कहा नहीं भी कहा और मुख तो हृदय का दर्पण होता है यदि समझ में नहीं आता तो तुम कहा क्यों नहीं तो तुम्हारे चेहरे से देखने से मालूम पड़ता है तुम्हें समझ नहीं पाता कि तुमने समझा कि नहीं अरे समझता तो हृदय उत्फुल्ल हो जाता तो कहीं स्मित हास्य भी तो आता ऐसा भी तो करता तो फिर भी नहीं हिलाता और ये भी नहीं कहता कि हमारे समझ में नहीं आया ये भी नहीं कहता कि हम समझ गए कुछ भी नहीं कहता मैं कुछ समझा नहीं कि सात दिन में तुम्हारे अंदर में हमारे शासनों का वेदांत की व्याख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं जी प्रभु जी आपने जो वेदांत के सूत्र जो बतलाए विशेष करके पांच या छह पहले का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जरणा दस्य शास्त्र जोनि स्वाद तत्व समन्वया खतेरना सप्तम ये लोकवस्तु लीला कैवल्यम। ये जो सूत्र हैं इन सूत्रों का अर्थ तो ऐसे समझा जैसे सुजीवित होने पर चमकते हैं और दिखाई पड़ते हैं ऐसे ही झलमल कर करने लगा। किंतु ये एक बात किंतु क्या महाप्रभु जी कुछ संकोच कर नहीं संकोच करने की बात नहीं है तो बतलाओ तो कहीं जो आप व्याख्या किंतु जो करते हैं ऐसे मालूम होता है कि सूर्य को किसी काले बादल ने ढक दिया सन्न रह गए। आज तक हमको इस प्रकार से किसी ने नहीं कहा और हमारे विचारों का खंडन नहीं किया तो ये तो अप्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में हमारे विचारों का ये खंडन कर रहा है। अभी छोकड़ा अभी केवल 24 वर्ष का तो अभी पढ़ा नहीं वेदांत दर्शन व्याकरण केवल पढ़ा और ये हमारे विचारों का। मैंने कितने बड़े बड़े सन्यासियों को जो परमहंस से उनका मैंने लंगोट बदल दिया जो पट बदल करके उनका संन्यास का उच्च संन्यास में दिलवा दिया और हमारे भारत सम्बन्ध भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे विचारों का खंडन कर सके। और ये छोटा सा बालक और कैसे चतुराई के साथ में ये खंडन कर रहा है ये बोलो तो हमारे शब्दों से हमारी व्याख्या में कहां तुमको मालूम हुआ कि मैं ठक रहा हूं। प्रभु जी आप करेंगे भगवान का रूप में भगवान का गुण भगवान का लीला ये किसका भक्त में अनुकार गुरु जी का। गुरु जी ये कह रहे हैं उस डायलॉग को वहां पर अपने भाषण में कर रहे हैं उनको मैं अपने बतला रहा हूं। तो वो महाप्रभु जी ने कहा जी आपने कहा कि भगवान का रूप नहीं है किंतु वेदांत के सूत्र में एक ऐसा भी सूत्र नहीं है जिसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला का बोध नहीं होगा। जैसे महाराज जी ने भी कहा ना ज्ञानी लोग कहते हैं कि वेदांत सूत्र में कहीं भी ज्ञान नाम की कोई शब्द नहीं है। गुरु जी ने इसका उत्तर दिया था भक्ति का कोई उल्लेख नहीं कि भक्ति का उल्लेख तुमको उल्लू सूर्य उग रहे हैं आंख बंद कर रहा है कहता है कि सूर्य उदित नहीं है तुम तो ठीक ऐसा उल्लू है। उल्लू क्या करता है रात दिन में देखते हैं वो जानते नहीं कि सूर्य कैसा होता है सूर्य का प्रकाश कैसा होता है तो फिर तुम उल्लू जैसा है। आराधना माने क्या होता है अभी संराधने प्रत्यक्ष माना ध्यान ये आराधना माने क्या होता है और अंतिम जो अनावृत्ति सप्ताह अतः तुम भक्ति का पुनः पुनः अनुशीलन करना इसके द्वारा तुम्हारे दिमाग में ये चीजें नहीं आ रही है। समस्त वेदांत में भक्ति का ही तात्पर्य है इसको बलदेव विद्याभूषण ने पीछे से ये दिखलाया इसीलिए उसका नाम गोविंद भाष्य रखा। गुरु जी ने इसकी बड़ी सुंदर उसे तो वही महापुरुष जिसके साथ में उनके साथ में जो विचार चल रहा है उसने कर रहे हैं इस उन्होंने कहा कि देखो महापुरुष से सूत्र में आपको ये लगा कि भगवान का स्वरूप नहीं क्यों ये तो साफ लिखा क्या अरूपवत ये वही तत्वधान भगवान अरूप जैसे हैं और यही अरूप ही उनका प्रधान है। कहीं व्याकरण पढ़े हैं आप कभी व्याकरण पढ़े कि नहीं पढ़े जो चीज है ही नहीं है उसमें वत का जो प्रत्यय होता है वो नहीं लगता। वत प्रत्यय तो उसी में लगता है जो वस्तु है तुल्यार्थ होगा तो जो वस्तु ही नहीं है उसमें ईव और वत प्रत्यय ये सब नहीं लगता है। यहां तो ये इसका है और उपवत एवं ही तत्प्रधान उत्पाद और उप जैसे दीख पड़ रहे हैं ये अर्थ मत लगाओ और रूप जैसे दिखते हैं माने प्रातित उनका कोई भी रूप नहीं है अप्रातित उनका रूप है और उनका प्रातित रूप ही मूल है उनका भी रूप है वो अरूपवत एवं ही उनका एक और है ना जो भगवान मूर्ति नहीं है वो स्वयं है क्या हो अरूपवत एवही न रूपवत रूप के समान ऐसा मत कहो अरूपवत न रूपवत किसी अरूपवत ऐसा नहीं। अरे वो जो विग्रह वो स्वयं भगवान है ये अर्थ लगाओ रूप के समान है और ये सब नहीं उनका वही ज्योति विग्रह है विग्रह है तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ये समझो वो प्रतीक मात्र नहीं है और उसके द्वारा उनकी स्थापना कर दी उनका मुख्य घटक गया और उसके बाद में उन्होंने बतलाया आराधना इत्यादि का जो सूत्र बतलाया अभी अभी संराधने प्रत्यक्ष अनुमानाध्यान वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं उनकी अनावर्ती शब्द के द्वारा इसी तरह से वेदांत के प्रत्येक सूत्रों का अर्थ उन्होंने देखा कि उनका निरुत्तर कर दिया और उनके चरणों में गिर गए और गिरने के बाद ही महापुरुष जी ने उनको अपना सर्वोच्च रूप दर्शन किया कराया और वो उनको सदा के लिए भक्त हो गए इस मात्र बाद इत्यादि सब को तो ये गुरु जी का इसी सूत्र के द्वारा भगवान का उस बड़ी विद्वत सभा में निरूपण किया। एक बात उन्होंने ये भी बतलाया कार्य कारण बात कॉज एंड एक्शन थ्योरी यदि कॉज में कारण में कोई चीज नहीं है तो कार्य में वो नहीं हो सकता। जैसे आम देखते हैं आम यदि गुठली में आम नहीं है तो वृक्ष के रूप में उस गुठली से आम नहीं होगा। ये जो समस्त जगत के रूप देखते हैं ये रूप आया कहां से जन्म आदर्श जब जिससे जन्म स्थिति प्रलय होता है तो उस ब्रह्म में यदि सब रूपों की पोटेंसी नहीं है तो ये रूप नहीं आ सकता है। आरायण रिकॉर्ड फॉर इसलिए वो जो ब्रह्म है उसमें स्वयं रूप है और उस रूप में समस्त रूपों की पोटेंसी उसी के अंदर में इसीलिए उसे समस्त रूप इत्यादि प्रकाशित हुए हैं जिसमें जितने भी रूप इसलिए उसमें सब रूप है किंतु प्राकृत नजरों से वो दिखते नहीं। अरे इस जगत में एक उदाहरण उन्होंने दिया पानी पानी एक चीज है उसको देखते हैं किंतु पानी का रूप कैसा है उसका शेप कैसा है आकार कैसा है वाटर हैज नो शेप वाटर हैज नो कॉलर पानी का रूप कैसा जैसा वहां का मिट्टी होगी चीनी का पानी कैसा होता है पीला स्वांभू नदी का पानी पीला होता है क्योंकि पीली मिट्टी से वो होकर के गुजरती है। यमुना का पानी कैसा नीला कै क्यों कृष्ण इसमें स्नान करते थे उनका अंतराग और अंत कांति उसमें मिल गई उनको काली हो गई। गंगा जी है सफेद क्यों महाप्रभु हो रहे हैं इसलिए अंगों से उनका हो गया। यहाँ का मिट्टी का भी ले लो तो वैसे तो वो जैसा देश रहेगा जो कोई कारण हो उस तरह से उसका पानी कारण हो जाता है। वाटर हैज नो कॉलर वाटर हैज नो शेप वाटर पानी का कलर कैसा कलर भी नहीं है कॉलरलेस उसमें कोई भी गुण नहीं। अरे पानी में अपना कॉलर नहीं है, है। पानी का शेप जिस चीज में रखते हो वैसा हो जाएगा और यदि उसका कोई आकार नहीं होता तो उसे हम देख सकते थे कोई देख रख रहे हैं उसे किंतु वी कैन नॉट डिफाइन इट। एक पानी को ही हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा जो उसका शेप क्या है आकार है कॉलर क्या है और क्या है। तो भगवान जो सबके मूल जन्मदाता और सब उनसे निकलता है उनके भगवान का रूप का तुम क्या निरूपण करेगा इस तुच्छ बुद्धि से। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा जो कहते हैं कि मैं जानता हूं वो कुछ नहीं जानते हैं। इस तरह से उन्होंने देते हुए अंत में कहा यदि मुक्ति भगवान नहीं है तो उदाहरण दिया इनका छोटे विप्र और बड़े विप्र का कहां विद्यानगर से आए वृंदावन में गोपाल जी की मूर्ति थी उनके पास में गए बड़े विप्र ने कहा छोटा विप्र तू हमारी बड़ी सेवा की अब मैं कुछ तुमको देना चाहता। उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई स्वार्थ के लिए आपकी सेवा नहीं की निस्वार्थ रूप से आप प्रसन्न रहे बट हमको भगवत भक्ति हो और कुछ मैं नहीं चाहता। नहीं नहीं तुमने जैसी सेवा की तुम नीच जाति का होने पर भी ब्राह्मण मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करूंगा महाराज जी ऐसा मत करिए, मैं गरीब दरिद्र हूँ और मैं उच्च वर्ण का ब्राह्मण नहीं, मैं नहीं कहा आप लोग कुलीन है। कहे नहीं, मेरी लड़की जिसको दान का हूँ मेरा धन संपत्ति। अच्छा तो याद रखेंगे ठाकुर जी के सामने पति क्या करके कहते हैं। जब देश में गए तो उन्होंने अपनी बात बच्चों से और अपनी स्त्री से कहा, उन्होंने कहा यदि उसको लड़की दिया हम लोग बीस खा करके मर जाएंगे। अब तो बड़ी भारी मुश्किल हुई, वो लड़की नहीं दे सका इनको। कुछ दिनों के बाद में आया वो, अरे महाराज आपने कहा था कि हम अपनी लड़की का दान आपसे करेंगे, तो आप दान क्यों नहीं कर दो, आप तो झूठे पड़ जाएंगे ठाकुर जी के सामने आपने कहा। तो कुछ नहीं, उसके लड़कों ने आकर के इसको मारने धमकाने की बात करी, खबरदार है चमत्कार। तो उसने पंचायत जोड़ दी, पंचायत में उनके लड़के और लड़कियों ने कह दिया और उसकी स्त्री ने, आप कह दीजिए केवल मुझे याद नहीं उसने मुझे क्या पिला दिया और हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उस समय में बस बैठे उधर और पिला दिया और मेरी बुद्धि, मैंने क्या कहा मुझे याद नहीं, मैं देख लूँ हम लोग देखें सुभान उसने ऐसा कर दिया, मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा क्या पिला दिया मेरी समझ में नहीं आया। अरे देखो इसको मैंने क्या पिला दिया, सत्य ऐसा किया, इनकी बुद्धि ऐसी हो गई। संजय ने कहा क्या नहीं कहा इसको पता नहीं। लड़के ने कहा जे ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी के सामने तुम्हारा कोई है साक्ष्य? हाँ हाँ साक्ष्य है गोपाल जी। तो ठीक है उनको बुला लो। शर्मा ने कहा यदि आ करके कह देंगे तो हम मान लेंगे। और वो छोटा भी ठाकुर जी के पास में आओ कहा ठाकुर जी आप चलिए और साक्षी दीजिए। ठाकुर जी अरे मैं पत्थर की मूर्ति कहीं साक्षी देने जाता हूँ, मैं नहीं जाता कहीं। कहते तो ठाकुर जी जो पत्थर के बने हैं तो वो बोलते नहीं, आप बोलते कैसे हैं प्रभु? तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, जो बोल सकते हैं वो चल भी सकते हैं। अच्छा तो कल हमको सवा शेर का पूरी और परमा में खिला करके ले चलना और पीछे फिर करके मत देखना। बस उनको लेकर के गया और वहां को उन्होंने साक्षी दी। तो जो ठाकुर जी साक्षी दे रहे हैं यहाँ सनातन गोस्वामी जी के मदन मोहन के संबंध में आप लोगों ने सुना है कि ये पत्थर नहीं गोसी विग्रह सही भगवान है। जो लोग विग्रह बोली ना सही पाषण दी जौंडे सारे जौन हिंदू लोगों की ये प्राप्त सनातन धर्म की ये है। जो लोग भगवान का विग्रह नहीं मानते वो अस्पृश्य है, वो दंडनीय है। आज अधिकांश लोग सब किसी विचार के हो गए भगवान की मूर्ति नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर बहुत सात्विक और युक्तिपूर्ण वहां पर बात की। इस तरह से जहां जहां वो गए बड़े बड़े स्तर पर दांतिक और भक्तिपूर्ण उनके भाषण हुए। गौड़ीय पत्रिका में जगह जगह पर उनका संकलन किया गया है। बहुत दिन की महिमाएं अवसरार्थ हो गई, कभी कभी फिर होगा तो हम लोग आपके संबंध में बात करेंगे और बताएंगे। बड़े प्रतिभाशाली आचार्य थे, यदि वो लोग नहीं आते तो प्रभुपाद के बाद में वो धारा रुकी जाती, यह बात एकदम संपूर्ण रूप से सत्य है। इसीलिए ये आकर के जो परिक्रमा नौदिक धाम की बंद हो गई थी उसको उन्होंने सब प्रथम फिर से चालू किया। कार्तिक महीने में यह अनुष्ठान होना बंद हो गया था सामूहिक रूप में। गुरु जी इन सब लोगों को लेकर के, ये सब हमारे व्यवस्थापक थे महाराज जी और अग्रिम पार्टी के थे, जाकर के वहां से सब गुलिया ले आते थे कि कहां कहां क्या करना है और फिर गुरु जी उन सब स्थान में जाते थे और तंबू लगाना और सब जो चीजें रसद पहुंचाना सब ये महाराज जी का काम। और मैं इनके पीछे पीछे इनके साथ साथ में इनकी सहायता करने के लिए कहीं बांस तंबू में लगा करके टाल दिया कहीं कुछ कहीं ये सब हम लोग के सिर के बाद उस समय में सब नहीं थे। इसलिए गृहस्थों का वो धोते धोते बिछौना और अटवा गुरु जी के चिराकली जो जीवन में नहीं किया, दस पांच नौकर लगे रहते और हम लोगों ने अपना प्रतिष्ठा सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए सब लोग हम लोगों ने ये सब। इसीलिए आज हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो हम लोग भी कहाँ चले जाते। महापुरुषों की कृपा ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती। तो उन्होंने आरंभ किया और उसके माध्यम से सबक का प्रचार किया। भारतवर्ष का ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां पर कि हम लोग दो चार बार हम लोग नहीं गए और गुरु जी के बाद में उनके पथ प्रदर्शन में हम लोग फिर से परिक्रमा आरंभ करके चारों तरफ हम लोग गए और अभी तक ये सब परिक्रमा का क्रम इत्यादि चल रहा है। ये प्रचार का एक बड़ा सारी माध्यम है, लोग सब आते हैं सुनते हैं और जो आते हैं मान लीजिए 500-600 आए तो समझिए कि जो 200-400 जरूर शिष्य हो जाए और जरूर भजन करने लग जाए। एक महीना का फल निष्फल नहीं जाएगा और आज नहीं तो कल फिर जरूर उसमें आ जाए। हरि भजन का ये हरि कथा का ऐसा ही कार्यक्रम है और संन्यास धर्म भी चला गया, खत्म हो गया था। गुरु जी ने हम लोगों को सबसे पहले तीन आदमियों को कुछ बात बमन महाराज जी से विक्रम महाजन हमको तीन को एक साथ में त्रिदंड से संन्यास दिया और नाम क्या रखा, भक्ति वेदांत और इसके बाद में भक्ति मैंने भक्ति ये वेदांत भक्ति सूचक है, ज्ञान इत्यादि नहीं है, इसलिए उसकी स्मृति में गौड़ीय वेदांत समिति और गौड़ीय वेदांत नारायण बामन इत्यादि ये सब नाम रखा हूं। एक अपनी विशेषता क्या है, कुछ लोगों ने इसका प्रतिवाद किया किंतु पीछे से वो निरुत्तर हो गए, उन्हीं की धारा में आना पड़ा। जब देखा जाए इनका एक लाइन हो गई, इनके जितने शिष्य हैं वो भक्ति वेदांत हो रहे हैं तो देखा जाए तो सब फिर हम लोगों का कोई चिन्ह नहीं रहेगा, इसलिए उन लोगों ने भी कुछ इनको फॉलो करना आरंभ कर दिया। इसी तरह से इन्होंने चारों तरफ में प्रचार करना आरंभ किया। गौड़ीय पत्रिका प्रभुपाद के समय में गौड़ीय थी, वो बंद हो गई थी कि गौड़ीय पठाओ भरे भरे, प्रभुपाद जी का ये था। ये बृहद मृदंग का आता था, बृहद मृदंग मैंने क्या, ये मृदंग जो बजेगा बस इसी हॉल तक जाएगा और माइक लगा दो तो थोड़ी दूर तक, अधिक दूर नहीं है। और ये पत्रिका का जो मृदंग है अमेरिका जा रहा है, कहां कहां जा रहा है, भारतवर्ष के सब जगह एक जगह छाप दिया और चारों तरफ में चला गया, इसकी ध्वनि इतनी दूर, इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम दिया था बृहद मृदंग। इसकी ध्वनि सर्वत्र पहुंचती है, घर घर पहुंचेगी घर बैठे, इसलिए गौड़ीय पत्रिका फिर से चालू किया और हिंदी में चालू किया कि भागवत पत्रिका। अभी कुछ दिन हुई भागवत पत्रिका हमारे दूरदर्शन से तो बंद रहते थे, गौड़ीय पत्रिका भी चल रही है तो वो भी बंद हो जाता। इसी तरह से सभी कुछ बंद होने का था, गुरु महाराज जी ने फिर से आकर के नए उद्यम से जब आरंभ किया और लोगों ने भी ये सब चीजें आरंभ की और फिर धीरे 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 अब इन महापुरुषों के चले जाने से धीरे 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 सुधा महाराज जी भी, माधव महाराज जी पहले थे, सौती महाराज जी, गिरी महाराज जी, बंद महाराज जी, गोस्वामी महाराज जी थे जिन्होंने, गोस्वामी महाराज जी ने गुरु महाराज जी की भक्ति की ये देकर के दृढ़ता और खंडन देकर के जो और संप्रदाय का खंडन करते हैं, इसलिए इनका एक नाम दिया था उपनाम पाखंड गजई का सिंह, उनकी उपाधि दी थी। पाखंड रूप हाथी को आक्रमण करके उसको दमन करने वाले, इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों ने ये सिंह होकर में बैठाया है। नृसिंह जी सिर्फ भक्ति सिद्धांत और नीचे में हाथी रूपी सिद्धांत और नवदीप में गुरु जी ने नृसिंह तोरण रखा है, उस पर नीचे हाथी और ऊपर से बाघ आक्रमण कर रहा है, ये सब निकला है। तो इस तरह से ये समस्त भारतवर्ष में इन्होंने प्रचार किया, प्रभुपाद जी की धारा को अक्षुण्ण रखा। अब वो लोग धीरे 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 अप्रकट हो रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं जहाँ पर की बड़े बड़े पेड़ नहीं वहां पर क्या होगा, ध्रुव क्या हो गया, यहाँ पेड़ एरंड वृक्ष होता है अरंडी का, एरंडी का अरंडी माने रंडा होता है जिसका तेल निकलता है, वो अंडी का वो थोड़ा अधिक बड़ा नहीं होता, अधिक से अधिक 6-7-8 हाथ होगा तो जिस प्रदेश में नहीं होती। अब हम लोग बड़े बड़े सीनियर वैष्णव हो रहे हैं, उनकी विद्वता देख करके हम लोग कहते थे हम लोग संन्यास नहीं लेंगे, किस लिए, इतनी सुंदर विद्वान संस्कृत के मारखंड सुंदर और इतने सत्तज्ञ प्रचारक सब विद्वतों की कला में हम लोग तो संस्कृत बोल नहीं पाएंगे और उसमें प्रभुपाद के शिष्य ऐसे दिग्विजय थे, बड़े बड़े विद्वानों का मुख बंद कर देने वाले कोटा का प्रभुपाद के वो सिद्धांत ब्रह्मचारी, एक अरण्य महाराज जी थे निरक्षर, गुरु महाराज जी से उनका बड़ा चौका अरण्य रोदन करने के लाभ क्या, तो कहता जी के सौ तू हाँ जगत सभी ऐसे सब लोगों में गुरु भाइयों में चलती थी। तो वो पढ़े लिखे अपना नाम भी दर्शक नहीं कर सकते, तो पूर्व बंगाल में प्रचार करने गए तो युक्ति के लिए उन लोगों ने कहा जैसे कल सभा होगी और आपको दिखलाना होगा रामकृष्ण मिशन के और सब दूसरे विचारों के वो लोग सब थे, तो वहां पर कुछ चल रही थी तो इन्होंने क्या किया, नृसिंह महाराज जी हमारे थे 25 इंच ले आओ नया नया और कागज ले आओ पूरे, अच्छी इंच क्या करोगे तुम ले आओ ले आओ मुठ कहीं का महाराज जी जैसे डांट देते हैं ना एकदम डांट दिया, डांट करके बोले ले आओ, तो वो ले आए इस लोग सब कागज में बंधवा करके और श्रीमद्भागवत वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद ये सब लिख कठोपनिषद इत्यादि लिख करके उसी पर ईंट के ऊपर में और उसको लगवा करके ले गए गाड़ी से, लेकर के वहां चारों तरफ में उसको ठक करके लगा दिया और बैठ गए और वैज्ञान ब्रह्म तत्व की व्याख्या करने लगे और गाय जी को अब करना हुआ है। वो लोग आए और देखा जी प्रभारी पंडित ब्रह्मकर और इतना पुस्तक लिया है प्रमाण की और ये इतना सुंदर सुंदर शब्द होता है और वैज्ञान पर सत्य से नीचे कोई बात ही नहीं अभिन्न भजन करण और दार्शनिक शब्द बोले सुन करके पशुपति चकरा गई और तू वहां से चुपचाप प्रकट कर ऐसे ऐसे पाठ के सब बड़े थे और इस तरह से प्रचार निरक्षर व्यक्ति आता प्रचार और भाषण कैसे अद्भुत चीज पर।